ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में निदेशक दीपक विरमानी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
आज का दिन कई मायनों में बड़ा खास है और देश के गृहमंत्री जी ने आज देश की साइबर सुरक्षा पर बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते।
दीपक जी, साइबर क्राइम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक आज के समय में हमारे लिए बन चुका है। एक सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जीवन में साइबर सुरक्षा का कितना महत्व है और ये आवश्यक आज के समय में क्यों हो चुका है।
माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन और गाइडेंस से I4C ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से शुरुआत की है। I4C एक गृह मंत्रालय MHA के अंडर में अटैच्ड ऑफिस के रूप में कार्यरत। 2018 में I4C ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। माननीय गृह मंत्री जी के गाइडेंस और मार्गदर्शन से कई कदम उठाए और आज माननीय गृह मंत्री जी ने देश के सामने चार बड़े I4C के इनिशिएटिव, जिसमें हम लोग कुछ महीनों से कार्यरत थे, उन सबका शुभारंभ किया। आज I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपना पहला फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि साइबर सुरक्षा को हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। साइबर सुरक्षा अब नेशनल सुरक्षा का अहम पहल बन गया है और इसलिए आज जब हमारा विज्ञान भवन में यह फंक्शन हो रहा था, जिसमें माननीय होम मिनिस्टर साहब थे, उसमें उन्होंने महत्व दिया कि हम सभी संस्थानों को, सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि पुलिस अधिकारी, बैंक्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, स्कूल के बच्चे, इन सबको मिलकर हमें एक साथ इस क्राइम के खिलाफ लड़ना होगा और साइलोज में नहीं काम कर पाएंगे। ऑनरेबल गृह मंत्री जी ने इसमें फोकस किया कि अब हमें नीड टू नो की जगह हमें ड्यूटी टू शेयर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमको एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा, जिससे जो हमारे सामने एक जो दिखता नहीं है क्राइम, जो बॉर्डरलेस क्राइम है, जिसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं, उसके खिलाफ हम लोग इन चुनौतियों का एक रणनीति बनाकर इसका सामना करें।
दीपक जी, अगर एक सामान्य व्यक्ति किसी साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देना चाहता है, सरकार तक जानकारी पहुंचाना चाहता है, तो किस तरह से पहुंचा सकता है और कोई हेल्पलाइन नंबर हो जिस पर वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सके?
ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक I4C ने एक नेशनल पोर्टल बनाया है फॉर रिपोर्टिंग दी साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। मैं इसको बताना चाहूंगा, फिर दोहराना भी चाहूंगा।
जी जरूर।
www.cybercrime.gov.in। मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, www.cybercrime.gov.in। ये एक नेशनल पोर्टल है जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इसको पिछले समय में लॉन्च किया था, 2018 से चल रहा है। और इस पोर्टल पर कोई भी सिटीजन भारत में कहीं भी बैठा हो, किसी भी जगह पे हो भारत में, वो उस जगह पे बैठ के अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई साइबर क्राइम हो गया है, जैसे मान लीजिए किसी का ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पैसा को चोरी किया, जैसे मान लीजिए कि किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर दिया, जैसे मान लीजिए कि और किसी तरह का क्राइम हुआ, रैंसमवेयर हो गया या सेक्सटॉर्शन हो गया, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्राइम जो अलग अलग तरह के मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल चेंज करते रहते हैं, तो किसी भी तरह का अगर क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, तो उसमें नेशनल पोर्टल में जाके, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जाके इसमें अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और जैसे ही एक व्यक्ति, एक विक्टिम, एक कंप्लेंट दर्ज कराता है, इमीडिएटली, क्योंकि हमारे सारे भारत के पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड हैं, लगभग 16,000 प्लस इसमें पुलिस स्टेशन कनेक्टेड हैं इस पोर्टल में, तो जैसे ही किसी सिटीजन ने अपनी कंप्लेंट एक विक्टिम में दर्ज कराई, वो कंप्लेंट रियल टाइम पर, कंप्लेंट दर्ज करते ही उस पुलिस स्टेशन पर चली जाती है और उसका कॉग्निजेंस कंसर्न पुलिस स्टेशन लेता है और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन करता है। तो एक नेशनल रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसको हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बोलते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो पहले से I4C करता आ रहा है, वो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 जो है, ये एक नेशनल, इसका एक बैकग्राउंड पे एक नेशनल पोर्टल चलता है जिसको हम अपनी भाषा में CFCFRMS बोलते हैं, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें लगभग 330 बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फिनटेक कंपनीज, कुछ और भी रेगुलेटर्स होते हैं जिसको पेमेंट एग्रीगेटर्स बोलते हैं, ये सारे संस्था को हमने एक जगह पे इंटीग्रेट कर लिया है। तो अगर किसी का पैसा, आप देखते होंगे अमूमन कि जब किसी तरह का ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो नॉर्मली साइबर क्रिमिनल्स पैसे की लेयरिंग करते हैं। तो यानी कि मान लीजिए मेरे साथ कोई साइबर क्राइम हुआ तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा एक दूसरे बैंक में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, चौथे से पांचवें में, फिर वो पैसा निकाल लेते हैं। तो पैसा निकालने कई तरह के हैं, कभी वो एटीएम से पैसा निकालते हैं, कई बार वो बैंक में जाके किसी अनजान व्यक्ति को भेज देते हैं जिसको मालूम ही नहीं होता क्या कर रहा है वो, और एक चेक से पैसा निकाल लेते हैं, कभी क्रिप्टो करेंसी से निकाल लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो साइबर क्रिमिनल पैसा निकालने की कोशिश करता है। तो भारत सरकार, गृह मंत्रालय को ये लगा कि क्यों ना इन सभी को एक साथ जोड़ा जाए। तो समय समय पर जैसे माननीय गृह मंत्री जी दिशा आदेश देते हैं उसी के गाइडेंस के हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए हमने एक हेल्पलाइन नंबर लिया और एक बैकग्राउंड पे एक पोर्टल तैयार किया। इस पोर्टल में लगभग जैसे मैंने बताया 330 के आसपास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बैंक सब जुड़े हुए हैं। और जब भी किसी का अगर पैसा चोरी होता है तो हम गुजारिश करते हैं कि वो विक्टिम 1930 नंबर को कॉल करें, 1930 को। 1930 के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कॉल सेंटर्स पुलिस इसको मैन करती है और चलाती है, और अमूमन मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में नंबर 24 घंटे चलता है। तो जब सिटीजन कॉल करता है कि मान लीजिए कि मेरा एक पैसा निकला, तो सिटीजन से बहुत बेसिक डिटेल्स पूछे जाते हैं इस कॉल सेंटर द्वारा कि आपका कितना पैसा निकला, आपके कितने ट्रांजेक्शन हुए, आपके ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा जो डिटेल होता है जिसका जो थोड़ा डिटेल्स बता के उस कंप्लेंट को तुरंत दर्ज कर लिया जाता है। और एक टोकन के रूप में जब एक कंप्लेन दर्ज होती है तो टोकन के रूप में जहां पैसा जिस वक्त पड़ा हुआ है, जैसे कि मल्टीपल बैंक से पैसा जब साइबर क्राइम निकालता है तो जिस जगह पैसा पड़ा हुआ है वहां पे एक बैंक को सतर्कता मिलती है कि ये पैसा यहां पे आया है, उसको रोकने की कोशिश करें। और अगर ये पैसा दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में चला गया है तो तीसरे बैंक को टोकन जाता है, तीसरे से चौथे में गया चौथे को टोकन जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश हुई है कि किसी तरह से इस पैसे को रोका जाए। और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आईफोरसी और सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस ने मिलकर अलॉन्ग विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमने आज की तारीख तक लगभग 2900 करोड़ रुपया लोगों के बचाए हैं, जो लगभग 8.5 लाख विक्टिम्स के पैसे थे।
दीपक जी, आपने जो बातें बताई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल जो अब साइबर अपराध होते हैं उनकी टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो जहां फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो तो सिर्फ पैसे के लिए होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को टारगेट करके, खासतौर पर किसी पर्सन को टारगेट करके जो साइबर क्राइम किए जाते हैं उनका दायरा सीमित होता है, लेकिन जो साइबर क्राइम पैसों से रिलेटेड होते हैं वो कहीं से बैठकर कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे में राज्यों की भूमिका किस तरह से देखी जा सकती है, कोऑर्डिनेशन किस तरह का होता है, उनका काम किस तरह से जोड़ा जाता है इसमें?
जैसे मैंने अभी आपके सामने एक पॉइंट रखा था कि साइबर क्राइम क्योंकि बॉर्डरलेस है
जी,
मेरा किसी जगह पे मान लीजिए एक राज्य में मेरा बैंक अकाउंट है, मैं आज दूसरे राज्य में काम कर रहा हूं, जो साइबर क्रिमिनल है, जो फ्रॉडस्टर है, वो तीसरे जगह से, तीसरे राज्य से वो कॉल कर रहा है, चौथे राज्य से वो किसी तरह से एसएमएस भेज रहा है जिसमें गलत लिंक होता है, जिससे मैं क्लिक कर दूं तो पैसा जाने की संभावना रहती है, पांचवें स्टेट से एटीएम से पैसा निकाल रहा है। नॉर्मल क्राइम में हमें मालूम है कि ये क्राइम कहां से ओरिजिनेट होता है, बट साइबर क्राइम में जो हॉटस्पॉट्स हैं भारत में और इंटरनेशनल वो आइडेंटिफाइड है, लेकिन कौन उसका ओरिजिनेशन ऑफ क्राइम है ये पता लगाने में समय लगता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो उसमें निकल के आती है वो आता है कोऑर्डिनेशन। और चूंकि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है हमारे संविधान में, सो पुलिस का बहुत बड़ा महत्व है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करता है, पुलिस इसमें सारे स्टेट की और राज्यों की पुलिस और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती हैं अपने अपने दायरों में, अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में, और क्रिमिनल्स के खिलाफ केसेस चलाती हैं। तो एक बहुत बड़ा महत्व है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, बट हम सबको इस मिलके ही इसमें काम करेंगे तो रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
इसमें जन जागरूकता का स्तर कैसा होना चाहिए, किस लेवल से चीजें शुरू की जा सकती हैं?
साइबर क्राइम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग मानते हैं पहल और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मानते हैं वो है प्रिवेंशन, बचाव। बचाव एज द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री, एक नागरिक के रूप में मुझे अपने बचाव के लिए खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अपने घरों में देख लीजिए, आपके अपने घर में आप ये कोशिश करते हैं कि आपका दरवाजा ठीक हो, आपकी खिड़कियां बंद हो, और आप वो थोड़ी सतर्कता बरतते हैं। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कुछ क्राइम होता है तो फिर बाद में पुलिस आती है। तो वन ऑफ द मेजर पार्ट एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू टेक द प्रिवेंशन मेजर्स। हमें कभी भी किसी तरह का अगर कोई फ्रॉड कॉल आती है हमें उससे डरना नहीं चाहिए। कई बार आपको देखेंगे कि लुभाने की कोशिश करते हैं ग्रीड के रूप में कि अगर आप इतना पैसा डाल दें तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, हम उसमें किसी तरह से बहकावे में आ जाते हैं और उसमें कभी कभी सोशल इंजीनियरिंग का भी यूज करते हैं साइबर क्रिमिनल्स कि इस तरह से बात करेंगे आपसे कि आप उसके बहकावे में आ जाएंगे और अपने पैसे को आप डालना चालू कर देते हैं और जब आप पैसे को वापस निकालने की कोशिश करते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि पैसा तो निकल नहीं पा रहा है। तो वहां पे अगर हम लोग ये मान के चलें कि फियर, कोई किसी ने आपको कॉल करके बोला कि आपके पार्सल में कोई ड्रग्स मिला है
जी।
और मैं आपको डिजिटली अरेस्ट करता हूं, आजकल एक क्राइम बहुत चल रहा है डिजिटल अरेस्ट नाम से जानते हैं, तो स्काइप कॉल करके आपको एक जगह पे अरेस्ट कर देते हैं, स्काइप कॉल के थ्रू आप उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वहां पे डर का माहौल पैदा करते हैं। आपको बोल दें कि मैं फलाना पुलिस से बोल रहा हूं, मैं फलाना एजेंसी से भारत सरकार की बोल रहा हूं, हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसी तरह से लुभाने वाली स्कीम्स लेकर आते हैं कि आप बस ये छोटा सा काम कर दीजिए, जरा सा घर बैठे बैठे काम करें, इसको पार्ट टाइम जॉब स्कैम बोलते हैं, तो घर बैठे बैठे आप दुगुना तिगुना चौगुना कर सकते हैं पैसा। स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि आपका पैसा शाम तक डेढ़ गुना हो जाएगा, अगले दिन तक दो गुना हो जाएगा, तो आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। वो सारे के सारे जो इस तरह के एप्स हैं, फ्रॉड एप्स हैं, लिंक के माध्यम से कई बार आपके पास आ जाते हैं, कभी कभी SMS के थ्रू आते हैं, कभी कभी और माध्यम के रूप में आते हैं, तो इन सबसे भी हमको खुद ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमको सोचना पड़ेगा कि क्या ये कॉल जेन्युइन कॉल है, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये जेन्युइन SMS है, फिजिकली देखते हैं कि भाई कोई बंदा घर पे ना जाए, ऐसी हमको भी अपने प्रिकॉशंस को खुद को रखना पड़ेगा। और खुदा ना खासा अगर हम इसका क्राइम का पार्ट समूह हमारे साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो फिर हमको इमीडिएटली साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पे हमें कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए।
दीपक जी, मीडिया जन जागरूकता बढ़ाने में और इस तरह के अपराधों पर अगर हम रोक लगाने की बात करें या इन्हें न्यूनतम कम से कम करने की बात करें तो मीडिया किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, और मैं आपसे साइबर दोस्त हैंडल के बारे में भी जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए।
साइबर क्राइम के खिलाफ हम सबको एक साइबर जागरूकता अभियान सभी को मिलकर साथ हमें करना होगा। मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, मीडिया हमारी मदद कर सकता है अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स के मोडस ऑपरेंडे को पब्लिक को बता के आगाह करना कि कैसे कैसे इन सब से प्रिकॉशन लिए जाएं, कैसे कैसे इन सबका बचाव हो, और साथ में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर, स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर, कॉलेजेस के बच्चों के साथ मिलकर, NSS के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, NCC कैडेट्स के साथ मिलकर, नेशनल युवा केंद्र सबके साथ मिलकर हमको एक इस साइबर क्राइम के खिलाफ एक जागरूकता अभियान मुहिम छेड़ना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने आज जब हमारा ये चारों मेजर प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ था तो उसमें आदेश दिया है कि हम इसके बारे में एक रणनीति बनाएं और एक पखवाड़ा अगले कुछ महीनों में ऑर्गेनाइज करें जिससे कि हम लोग पंचायत तक जा सकें इसके जागरूकता फैलाने में कि साइबर क्राइम से हम लोगों को बचाव कैसे करना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा I4C भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, हम लोग एक हैंडल चला रहे हैं जिसका नाम है साइबर दोस्त। ये हैंडल हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग सभी प्लेटफॉर्म से हम लोग अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बीच में बताया कि साइबर क्राइम की मोडस ऑपरेंडाई समय समय पे बदलती रहती है, उसकी रूपरेखा बदलती रहती है। लक्ष्य जो होता है क्रिमिनल्स का ये होता है या तो हमारा किसी तरह से डेटा चुराएं या किसी तरह से हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक को हैक करने की कोशिश करें, इसी लक्ष्य में अलग अलग तरह के मोडस ऑपरेंडे बदलते हैं। तो हम लोग I4C में इन डिफरेंट तरह के मोडस ऑपरेंडाई को एनालाइज करते हैं समय समय पे, और उसके बाद सिटीजन्स के लिए साइबर सेफ्टी टिप्स निकालते हैं। अगर इस तरह का कोई फोन आता है, कोई SMS आता है, इस तरह के क्राइम की बात करता है तो आपको बचाव कैसे करें, तो मैं गुजारिश करूंगा सभी सज्जनों से और दी सिटीजन्स ऑफ दी कंट्री से कि आप लोग काइंडली साइबर दोस्त हैंडल को प्लीज ज्वाइन करें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर, जिससे कि जो हम समय समय पे साइबर सेफ्टी टिप्स निकालते रहते हैं वो आप तक पहुंचे और हम सब मिलकर एक दूसरे का साइबर क्राइम से बचाव कर सकें।
दीपक जी, आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ में साझा की, हमारे श्रोताओं इससे लाभान्वित होंगे। स्टूडियो में आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में निदेशक दीपक विरमानी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।